कहता है लिखो होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस, बच्चा वहां से पहला चालू करता है कि उसको पता ही नहीं पड़ रहा, पकड़ भी नहीं है हुआ क्या था, गेम क्या था भाई। ठीक है, गेम ये भाई दो लाइनें एक साथ बोलनी है नंबर वन। दूसरी बात, दो लाइनों में भी दो सेक्शन दिमाग में रखने, एक वो जो ओरिजिन से कटती है, एक वो जो कहीं और कटती है। क्या आपके दिमाग में ये बात आ गई? अगर आपके दिमाग में ये बात आ गई तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले तो अपने को ये बात पता होनी चाहिए, नॉन होमोजीनियस फॉर्म का डेल्टा अगर जीरो आ गया तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिखेगी, और डेल्टा अगर जीरो नहीं आया तो कॉनिक सेक्शन दिखाएगी। अब इसमें भी एक और बात याद रखिएगा, अगर भाई डेल्टा क्वेश्चन तैयार होगी, अब मैं दूसरे नंबर पर चल रहा हूं, कंपेयरिंग वाई वन वाई, इधर से वाई का कोफिशिएंट 5 है, इधर से वाई का कोफिशिएंट बनेगा माइनस सी टू, सोचना, और एक वाई का कोफिशिएंट बनेगा प्लस का सी वन, श्योर है? अच्छा, सी वन, और अगर भाई मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं तो सॉल्व करने के लिए बस मेरे को सिर्फ माइनस करना है, प्लस करना है, माइनस करना है। तो जैसे मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों का ऐड करते हैं 3 सी टू इक्वल टू में माइनस 6, इसका मतलब मेरे लिए सी टू की वैल्यू माइनस 2 आ गई। सी टू की वैल्यू माइनस 2 रखते ही, ठीक है ना, सी वन प्लस 2, सी वन इक्वल टू 3 हो रहा है। सोचो आप, 3 है कि माइनस 3? 3, श्योर है ना भाई? तो मेरे पास आंसर आ गया सी वन सी टू, तो लाइनें भी आ गई। सो लाइन्स आर एल वन 2x स्क्वायर प्लस में एक्स वाई माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का x प्लस के अंदर 5y माइनस का 6 इक्वल टू 0 मार्क दिया हुआ है। देखिए साहब, दो लाइनें कैसे बताई जाती हैं? सबसे पहले जो इसका नॉन मतलब जो इसका होमोजीनियस पार्ट है उसको क्रैक कीजिए, ठीक है ना? तो इसका मतलब पहला टाइटल होता है फैक्टराइज होमोजीनियस पार्ट, जिसका होमोजीनियस पार्ट है उसको क्रैक करने की कोशिश कीजिए। ये क्रैक हो जाता है नॉर्मली, देखिए साहब, अगर भाई मैंने इसको सिर्फ इतने से हिस्से को क्रैक करा जो यहां से यहां तक है होमोजीनियस पार्ट है, तो देखिए 2x स्क्वायर दुनिया में तभी आता है जब 2x की x से मल्टीप्लाई हो जाए, जो पहला हमारा इंटरप्रिटेशन तो वो ही होता है। दूसरा, माइनस का y स्क्वायर तब आता है जब y की माइनस y से मल्टीप्लाई हो जाए। अच्छा, तो मैं यहां पे तो माइनस y लिख रहा हूं, यहां पे प्लस y लिख रहा हूं, क्योंकि मैं y की y से मल्टीप्लाई करूंगा y स्क्वायर आएगा, लेकिन इस दौरान मेरे पास प्लस का xy भी बचना चाहिए। तो देखो साहब, x की जिस दिन इससे मल्टीप्लाई हुए माइनस का xy, और जिस दिन y की इससे मल्टीप्लाई 2xy, 2xy माइनस xy प्लस का xy, क्या ये बात सही है? माने ये दोनों इसका फैक्टराइजेशन बराबर कर गए, ये तो आपका पहला काम हुआ। अब जैसे फैक्टराइज पार्ट हुआ उसके बाद में एड c1 एंड c2, ठीक है ना? इसके बाद दूसरा पार्ट होता है एड c1 एंड c2 एंड कंपेयर, उसके बाद कैसे चलना वो समझा रहा हूं, जरा देखिएगा। क्वेश्चन के अंदर मेरे पास में जो दे रखी है ना, वो इक्वेशन दे रखी है 2x स्क्वायर प्लस में कितना xy माइनस का y स्क्वायर माइनस का x प्लस का 5y माइनस का 6 इज इक्वल टू, दोनों ब्रैकेट लिख रहा हूं, पहले ब्रैकेट में लिख रहा हूं 2x माइनस y प्लस c1, दूसरे ब्रैकेट में लिख रहा हूं x प्लस y प्लस c2। अब ये होमोजीनियस पार्ट मेरे काम का नहीं है, तो जो मैं कंपैरिजन करूंगा नॉन होमोजीनियस पार्ट पे कंपैरिजन करूंगा, और मेरे को सिर्फ c1 c2 निकालना है, ठीक है ना? और दो चीजों को निकालने के लिए दो इक्वेशन की जरूरत काफी है वैसे तो, लेकिन फिर भी दिमाग लगाते चलेंगे। देखिए, c1 की जिस दिन इस x से मल्टीप्लाई हुई c1 x बनता है, अच्छा जिस दिन इस c2 की 2x से मल्टीप्लाई हुई उस दिन 2c2x बनता है। तो x के नाम पे सबसे पहले कंपेयर कर रहा हूं, कंपेयरिंग x, जिस दिन मैं x को कंपेयर करूंगा तो x के नाम पे इधर का कोफिशिएंट है माइनस 1 और x के नाम पे इधर का 2c2 प्लस c, ठीक है? अच्छा, इसमें सबसे पहले आप गिवन लिखेगा, गिवन देखिए फटाफट से, गिवन ए सेकंड डिग्री कर्व, और सेकंड डिग्री कर्व फटाफट से, ए सेकंड डिग्री कर्व, ठीक है? एक सेकंड डिग्री कर्व दिया जाएगा इसमें, ax स्क्वायर प्लस 2hx y प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 एंड अ लाइन, एंड अ लाइन, लाइन l अपन अपनी तरफ से ले लेते हैं lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0, राइट? एक लाइन दी जाएगी और एक ही दी जाएगा, ठीक है? अच्छा, होमोजेनाइजेशन में हम लोग निकालते क्या हैं, ये तो दिया जाता है, ठीक है? देखिएगा फाइंड, ठीक है, क्या टारगेट जो भी हमारे को फाइंड आउट करना है, ठीक है? दैट इज जॉइंट इक्वेशन ऑफ जॉइंट इक्वेशन ऑफ OA एंड OB, ठीक है, फटाफट से लिखिएगा, फाइंड जॉइंट इक्वेशन ऑफ OA एंड OB, OA एंड OB, लिख दिया। हाँ भाई, अब आइएगा, बात करते हैं इस पर, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, ये टारगेट रहेगा हमारा OA एंड OB की जॉइंट इक्वेशन। अच्छा, अब यहां पे आप में से कई लोगों के दिमाग में ये बात फिट कर लो, जैसे मैंने कर्व लिखा, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, अब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं बचा क्योंकि मैंने कर्व लिख दिया, लेकिन ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब दिखा था, जब इसका डेल्टा, लेकिन इसका डेल्टा जीरो नहीं होगा, इसका मतलब ये कि ये फिर ये हमारे इसमें क्यों डाला गया, क्योंकि इसमें लाइन इन्वॉल्व है और इसमें जॉइंट इक्वेशन की बात पूछी जा रही है। ये जॉइंट इक्वेशन क्या चीज है, जो हमने अभी भी पढ़ा था, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो ये इट इज अ पार्ट ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना, बेसिकली अपने आप में OA और OB। अब एक बच्चे के दिमाग में OA और OB, तो सर मतलब ये कि ये होमोजीनियस फॉर्म होगी, होमोजीनियस फॉर्म होगी, इसका मतलब ये कि x की डिग्री, xy की डिग्री और y स्क्वायर की डिग्री बराबर होनी चाहिए, और इसमें कोई भी x का टर्म, y का टर्म और कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ रही है, क्योंकि इसे OA और OB को जॉइंट दिखाना है, और O का नाम लेते ही ओरिजिन से गुजरने वाली लाइन होगी पक्की। अब इसका मतलब दूसरी बात, एक बच्चे के दिमाग में सर ये लाइनों का तो समझ में आ गया, कर्व है, इसका मतलब ये कि ये इस चैप्टर का नहीं है। मैंने कहा इस चैप्टर का काम नहीं है, तो फिर एक चैप्टर का काम है, या तो इस सर्कल का काम होगा, या फिर पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, हमारे पास चार चैप्टर में अब इसका यूज हो सकता है। तो इसका मतलब ये कि ये एक ऐसा ये एक्चुअली में बाउंड्री लाइन पे, स्ट्रेट लाइन की बाउंड्री लाइन पे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे खड़ा है और साथ में अदर चैप्टर्स की बात करता है, क्योंकि अदर की बात करता है इसलिए यहां डर है, ठीक है ना। अब मैं आपको ये बता दूं, बेसिकली इसका डायग्राम क्या है, अरे डायग्राम कुछ भी नहीं है, एक कर्वेचर कैसा भी बना लो, किसी भी तरह का कोई भी कर्वेचर बना लो, जैसा आपके मन में आए ऐसा, ठीक है, ये कर्वेचर है, मान लो कोई होता होगा, कोई पैराबोला वगैरह कुछ होता होगा, एनीवे, तो हमारी काम की बात क्या है, एक लाइन ने इसे कट मार दिया, ठीक है ना, इसने जहां कट मारा इस पॉइंट को ए नाम दे दिया, इस पॉइंट को बी नाम दे दिया, किसी ने कहा ए और बी के जॉइंट इक्वेशन बोल, बात समझ में आ गई। तो OA एंड OB के जॉइंट इक्वेशन बोलने का तरीका होमोजेनाइजेशन, क्या आपके दिमाग में आ गया। अब इसे थोड़ा चाहो तो सोफिस्टिकेटेड, ये तो मैं तो बिल्कुल एकदम इसको हाइपर फॉर्म में खेल गया, लेकिन अगर भाई तो जैसे सर्कल का कोई पार्ट था, प्लीज साहब सर्कल लाओ, जिसको दो लाइनों ने कट मार दिया, सही है, और दोनों लाइनों ने जहां कट मारा वो एक पॉइंट का नाम ए था, एक पॉइंट का नाम बी है, तो हम लोगों को OA एंड OB की जॉइंट इक्वेशन बोलनी है। करना क्या है, करना ये है कि ये लाइन है जिसने कट मारा, तो ये लाइन है जैसे इसको कट मारा, इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए ए और बी। दुनिया में गधे से गधे बच्चे को पता है कि इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए एक से वाई की वैल्यू को उठा के दूसरे में रखते हैं। yes, तो आपको ये पता चल गया कि एक से वाई की वैल्यू उठा करके दूसरे में रखने माने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, सही है। अब आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी निकालो, और फिर उसके बाद में ओ ए और ओ बी की इक्वेशन निकालो, फिर मल्टीप्लाई करो, इससे ज्यादा अच्छा तरीका हमारे पास है। और वो तरीका क्या है, हम कहते हैं कि इतना सब दौड़ने भागने की जरूरत नहीं है, सीधी बात, इक्वेशन की लाइन जो लाइन है उसको इज्जत से लिख लेते हैं अपन, कैसे लिख रहे हैं बहुत जरा हंसो सुनो, इसको हम लोग लिखते हैं lx plus my अपॉन में माइनस n इज इक्वल टू 1, n को उधर भेजा, माइनस n हुआ, नीचे ले आया, उधर 1 रह गया। फिर क्या करना है, फिर अपनी इक्वेशन को लिखा ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy, यहां तक दो दो डिग्री चल गई थी, जहां भी डिग्री 1 हुई, जहां भी डिग्री 1 हुई वहां 1 की मल्टीप्लाई कर दी। ये कौन सा वाला 1 है, जो अभी एंटर होगा 1 के नाम से, जैसे अपन रोडवेज के बसों में रुमाल रखते हैं फिर आदमी आता है, ठीक है, तो भाई ने पहले रुमाल रखवाया, अब आदमी आएगा, ये है पीछे, दिख रहा है ना आपको, तो पहले तो 1 रखवाया, प्लस में 2fy * 1 करा, और जहां कांस्टेंट था वहां 1 का स्क्वायर करा, ताकि जैसे ही मैं यहां पे 1 रखूंगा तो आप में से कई लोगों को दिख जाएगा ये 2gx हो गया, मल्टीप्लाइड विद क्या बना, lx plus my अपॉन में कितना बना, माइनस n बना, अच्छा प्लस में 2fy मल्टीप्लाइड विद 1, 1 का मतलब कितना बना भाई, lx plus my अपॉन माइनस n बना। अच्छा तब तक जिसका दिमाग और चल रहा है इसको ये भी बताए, c into में ये lx plus my अपॉन माइनस n का होल स्क्वायर बनेगा। अब जल्दी सोच के जवाब देना, ये y जिस दिन x से मल्टीप्लाई होगा xy होगा, xy जाकर के आगे जो xy खड़ा उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जिस दिन भी y की y से मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर बनेगा, वो y स्क्वायर आगे जाकर के by स्क्वायर में ऐड हो जाएगा, y स्क्वायर सारे इकट्ठे होते रहेंगे, अभी तक इसके पास xy और y स्क्वायर के सिवा कुछ नहीं निकला। सिमिलरली इसके पास में, ठीक है, एक x स्क्वायर निकलेगा, एक xy निकलेगा, x स्क्वायर में मिल जाएगा। अच्छा तब तक इस पे दिमाग लगाओ, जिसको स्क्वायर खोलना आता है उसको पता है स्क्वायर, एक तो x का स्क्वायर बनेगा वो x स्क्वायर में ऐड हो जाएगा, एक y स्क्वायर बनेगा वो y स्क्वायर में ऐड हो जाएगा, एक xy बनेगा वो xy में ऐड हो जाएगा, माने पूरी दुनिया में अब क्या बचा, या तो x स्क्वायर या y स्क्वायर या xy, और ये बनते ही जॉइंट इक्वेशन आ गई, होमोजीनियस फॉर्म तैयार हो। तो हम लोग इसके बाद में तुरंत लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy = 0 तैयार, और ये प्रोसेस है, जो हम लोग हर क्वेश्चन में फॉलो करेंगे। इसमें कोई फार्मूला नहीं है, प्रोसेस ही फार्मूला है। क्या हमको कहानी पकड़ में आ गई? चलिए फटाफट से कॉपी कर लो।
ऐसे नहीं याद रखेंगे कि सर्कल और लाइन का कोई क्वेश्चन पड़ा, हम ये याद रखेंगे कर्व और लाइन के किसी क्वेश्चन के अंदर दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट ने ओरिजिन पर राइट एंगल बनाया तो हमने होमोजेनाइजेशन यूज करा। हम ऐसे याद रखेंगे कि हमने होमोजेनाइजेशन कब यूज करा, जब सर्कल और लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट ने ओरिजिन पर राइट एंगल बनाया तब हमने होमोजेनाइजेशन यूज करा, ताकि हमारे दिमाग में, क्योंकि ये कभी हमने पढ़ा ही नहीं तो ये स्लॉट धीरे धीरे बनता जाएगा। ठीक है, देखिए साहब, ट्रांसफॉर्मेशन दो टाइप का होता है। आपने से पहले को बताएंगे ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? आम भाषा में बदलना, फॉर्म चेंज करना, बदलना है ना। हम लोग यहाँ पे किसके ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले आप लिख लो, पहले आप ये बात है ना, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस इज ऑफ टू टाइप्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस इज ऑफ टू टाइप्स, खटाखट लिख लिया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस इज टू टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट में डालिएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना भाई। सेकेंड रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अगली बात घटाघट पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन, फर्स्ट पॉइंट उठाते हैं हम, ठीक है ना। पहला पॉइंट इज पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ भाई, पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन पे दिमाग लड़ो। अगर भाई देखो बात करी जाए पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है ना, इसमें लिख लीजिएगा हेयर वी शिफ्ट एक्सेस, हेयर वी शिफ्ट हेयर, हेयर वी शिफ्ट एक्सेस, parallel to them, parallel to them, here we shift axis is parallel to them, here we shift axis is parallel to them, ठीक है। so we get a new origin, so we get a new origin, लिख लिया, so we get a new origin, ठीक है। bracket में h के, h को मार के, ठीक है। This is also known as origin shifting. This is also known as origin shifting. This is also known as origin shifting. ये actually में origin shifting ही था, ठीक है। आपने क्या किया, जो आपकी अच्छी खासी x axis y axis चल रही थी, ठीक है ना, उसको थोड़ा पैरेलली शिफ्ट करा लिया। अगर आपने ऐसे पैरेलली शिफ्ट करा लिया तो आपको पता चला x axis यहाँ शिफ्ट हो चुकी है, y axis यहाँ शिफ्ट हो चुकी है, तो आपका जो नया पॉइंट आया, जो पहले ओरिजन हुआ करता था वो हुआ करता था 0 0, अब आ रहा है h कॉमा k, उसे क्या फर्क पड़ गया? उससे फर्क ये पड़ गया कि ये वाला तो पॉइंट पहले x और y कहलाता था और दुनिया ही कहती थी कि यहां से यहां तक का जो गैप है दैट इज x और यहां से यहां तक का गैप है दैट इज y, ठीक है ना। अब सारी कहानी इस येलो एक्सिस की जगह पे व्हाइट एक्सिस से देखी जा रही है, तो जब यहां से देखी जा रही है तो ये वाला जो गैप है ना, ये वाला जो गैप है ये अब चेंज होकर के बन गया y डैश, और ये जो गैप है ऑब्वियसली चेंज हो गया y डैश, और इधर से जो गैप है ठीक है दैट इज x डैश। तो इसका मतलब ये कि जो xy है नाउ इट हैज बीन टर्न्ड इनटू x डैश कॉमा y डैश, जबकि ओरिजिनली अगर कोई देखा जाए तो इन दोनों के बीच में लिंक क्या है। देखिए ये अगर x डैश है तो आपको ये भी याद दिला दूं कि ये दूरी h है, सोचो जरा ये दूरी h है, अरे अगर ये पॉइंट hk है तो ये दूरी क्या है h, इसका मतलब ये h है तो ये भी h है, तो आप सोचो जरा h plus x डैश ये x है, तो इसका मतलब मैं दुनिया को बोल सकता हूँ x बराबर में x डैश प्लस h, नहीं पकड़ में आपके, तो आप जो सोच के बताइए जो y है, ये जो y है ये चलो y डैश प्लस k है, तो इसका मतलब ये कि y इज इक्वल y डैश प्लस k हो गया, ठीक है। और अगर भाई भी मेरे को, मैं आपसे पूछूं इसमें कोऑर्डिनेट नए वाले कौन से, x डैश y डैश x y, x डैश y डैश, तो इसका मतलब x डैश एंड y डैश आर x माइनस h एंड y माइनस k, न्यू कोऑर्डिनेट्स या ओल्ड कोऑर्डिनेट्स में से कुछ ना कुछ निकालना होगा, कभी कभार एच निकालना होगा, और ये दो इक्वेशन है जिनसे काम बनेगा, ठीक है। न्यू कोऑर्डिनेट्स फटाफट ये लिखने आगे चलेंगे। हाँ जी साहब, अब जरा इसके बाद जरा थोड़ी दिन पढ़ाई कर लें, ठीक है। नेक्स्ट इज रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन, टाइटल डाल दिया जल्दी, देखिए साहब, रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे दी गई होती है, ठीक है ना भाई। ये आपका कोई पॉइंट है जिसका नाम एक्स कॉमा वाई है, और जैसा अभी अभी अपने को जानकारी मिली कि ये दूरी एक्स कहलाती है और ये डिस्टेंस इज वाई, इसी कारण ये एक्स वाई कहलाते हैं, ऐसा ना। तो मैं आपसे इससे पहले कि मैं आगे जाऊं तो मैं आपसे पूछ लूं कि आपने ये क्या करा, इस पर परपेंडिकुलर डाला और वो उस पर, माने ये बात तो बताए ना, परपेंडिकुलर डालकर एक्स और वाई है। अच्छा, अगर ये बात समझ में आती है तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि किसी दिन ऐसा हो सकता है कि आपने ये वाला जो एक्स एक्सिस उसको थोड़ा ऊपर कर दिया, सही है। तो इसके ऊपर करते ही ये जो वाई एक्सिस था इसको तो 90 डिग्री पे रहना था, ये भी घूम गया। अच्छा, ये अगर बाय द वे इसका एंगल अगर थीटा डिग्री टर्न हुआ तो ये भी थीटा डिग्री टर्न हो गया। अब क्या पंगा हो गया कि एक्स और वाई तो वही है, ओरिजन भी वही है, इसमें ओरिजन तो मूव ही नहीं हुआ, लेकिन आपके एक्सिस तो रोटेट हो गई। एक्सिस के रोटेट होते ही अब जो नए कोऑर्डिनेट आएंगे वो तो ऐसे निकलेंगे ना भाई, इस पर परपेंडिकुलर डाल करके। तो ये जो परपेंडिकुलर डाला, ये डिस्टेंस इज वाई डैश। अगर ये वाला डिस्टेंस वाई डैश तो, और ये वाला डिस्टेंस जब मैं इस पर परपेंडिकुलर डालूंगा तो वो यूं डालेगा, जो परपेंडिकुलर डालूंगा आपके यहां डालेगा ना। तो ये जो नया जो बना, ये दैट इज एक्स डैश। तो ये जो एक्स वाई है दैट इज बीन टर्न इनटू एक्स डैश कॉमा वाई डैश। तो नए कोऑर्डिनेट एक्स डैश और वाई डैश निकलते हैं ना। हालांकि इसको निकालने का प्रॉपर तरीका तो बाय कोनिक थ्योरम है, माने जो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे रोटेशन के दौरान उससे निकाले जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने एक आसान रास्ता ये निकाल रखा है, हमको एक टेबल बस दिमाग में रहती है और उससे हम लोग फटाफट से क्वेश्चन कर डालते हैं। नए कोऑर्डिनेट ऊपर, पुराने कोऑर्डिनेट बाजू में, देख लिया। अच्छा, यहां लिखते हैं कॉस थीटा साइन थीटा और नीचे उसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। जब एक्स डैश पढ़ना होता है तो यू पढ़ते हैं, जब एक्स डैश पढ़ना होता है तो यू पढ़ते हैं, जब एक्स पढ़ना होता है तो यू पढ़ते हैं, ठीक है ना। जरा देखिएगा एक्स डैश कैसे पढ़ेंगे। एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। क्या भी बात समझ गए? अच्छा, अगर यही मेरे को एक्स पढ़ना होता तो मैं यू पढ़ता, तो एक्स इज इक्वल टू निकलता एक्स डैश कॉस थीटा प्लस वाई डैश साइन थीटा। क्या आपको बात याद रहेगी? पक्का
उनका डिफरेंशिएशन